हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। इनायत की अम्मी ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और कस के पकड़ते हुए उसे देखकर कहा, इनायत, सच बताओ, क्या तुम खुश हो? इनायत का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू आने को ही हो रहे थे, पर अब वो अपनी माँ का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वो अपनी माँ के हाथों से अपने हाथों को खींचती है और खड़े होते हुए कहती है, हाँ अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको कहीं से भी लग रहा है कि रियाज मुझे दुख देते होंगे? देखिए, इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, सब हमसे कितना प्यार करते हैं, और हम इतने समय से यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद आप तो सब कुछ जानती ही होगी कि ये परिवार कितना अच्छा है, फिर आप ऐसा सवाल क्यों कर रही हैं? इनायत की अम्मी कुछ सोचती है और फिर इनायत को देखते हुए कहती है, हाँ, तुम सही कह रही हो, रियाज का परिवार और लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम लोगों ने अचानक से शादी कर ली और फिर उसके बारे में किसी को बताया भी नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा सोचने लग गए थे कि ये सब अचानक कैसे हो गया। वैसे तुम दोनों ने शादी कब की? हमारी सगाई की रात को, हमने उसी रात को शादी कर ली थी। दरअसल रियाज मुझे उसी रात को लेकर काजी साहब के पास चले गए थे और हमने वहीं पर शादी कर ली थी। वो क्या है ना, रियाज को पता था कि कुछ दिनों बाद मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है और उसके बाद अब्बू के शोक मनाया जाएगा और फिर उसके बाद मेरी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। इन सब में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए रियाज ने मुझसे कहा कि हम शादी कर लेते हैं और जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो हम परिवार को इस बारे में बता देंगे। मैंने उनसे इसकी वजह पूछी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खास वजह नहीं है, वो बस मुझसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने उसी रात को शादी कर ली थी। इनायत बड़ी सफाई से अपनी अम्मी को झूठ बोलते हुए अपनी बात छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ तो माँ होती है, अपने बच्चों की लड़खड़ाती हुई जबान को वो कैसे ना समझे। अम्मी इनायत के कंधे पर हाथ रखती है और उसे झटके से अपनी तरफ कर लेती है। वो इनायत को घूरते हुए देखती है और कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ मुझे, क्या बात है? अपनी माँ की बात सुनकर इनायत ने बहुत मुश्किल से जो आंसू रोके हुए थी वो उसकी आंखों से बाहर बहने निकले। वो जानती थी कि वो अपनी माँ को सच नहीं बता सकती है, अगर उसने सच बताया तो उसकी अम्मी सीधे जाकर दादा जान से बात करेगी और अगर ये बात घर में किसी को पता चल गई तो कयामत आ जाएगी। रियाज उसके पूरे परिवार को कैद कर लेगा और फिर वो उन सबको सजा देगा, जो इनायत नहीं चाहती थी। वो अपनी माँ के गले लग जाती है और जोरों से रोते हुए कहती है, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, मुझे अब्बू की भी बहुत याद आ रही है, पर मैं क्या करूँ, अब वो मेरे पास नहीं है और मैं आपको दुख नहीं देना चाहती हूँ। अब्बू हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्या उन्हें ज़रा भी हमारा ख्याल नहीं आया? क्या उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं उनके बिना कैसे रहूँगी? इतनी बड़ी दुनिया में उनके बिना मेरा कौन सहारा बनेगा? मैं कैसे उनके बिना ज़िंदगी गुजारूँगी? अब्बू बहुत बुरे हैं, वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। इनायत की अम्मी ने इनायत को संभाला और उसके बाद उसका चेहरा हाथों में लेकर कहने लगी, तुम्हारे अब्बू के बस में होता तो वो तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करते। वो खुदा के पास अच्छे लोगों की कमी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे अब्बू को अपने पास बुला लिया है और तुम्हारे अब्बू दूसरी दुनिया में भी हमारे लिए जन्नत तैयार कर रहे हैं, ताकि जब हम कल को उनके पास जाएं तो उनकी बीवी और उनके बच्चे के लिए वहाँ पर मुनासिब जगह हो। इनायत की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी अम्मी ने उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, क्या तुम सच में इस निकाह से खुश हो? क्या तुम सच में रियाज के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? इनायत को पता था वो इनकार नहीं कर सकती है, अगर उसने इनकार किया तो जो वो सोच भी नहीं रही है वो भी हो जाएगा, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ अम्मी, मेरे और रियाज के बीच में सब ठीक है, बस हमने आप लोगों से बिना बताए निकाह कर लिया, इसी बात का अफसोस हम दोनों को भी है, इसीलिए तो देखिए उन्होंने खुद सामने से निकाह की बात कबूल कर दी है, वरना शादी की तैयारी तो वैसे भी चल ही रही थी ना। इनायत की अम्मी को थोड़ी तसल्ली होती है और वो हाँ में सर हिलाती है। अपनी अम्मी के कमरे से निकलकर आने के बाद इनायत अपने कमरे में जाकर खूब रोती है, लेकिन अब उसे संभलना था क्योंकि उसे नीचे जाना था। वो खुद को ठीक करती है और चेहरे पर अपने आंसुओं के दाग छुपाती है और नीचे जाती है तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वो धीरे से जाकर रियाज के साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाती है, पर उसकी वहाँ बैठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो रियाज का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस समय उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुराद जल्दी से अपने कमरे से निकलकर आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? आपको पता है मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी आज। चाची उसकी तरफ देखती है और घूर कर उसे देखते हुए कहती है, तुम इस शक्ल के साथ मीटिंग में जाने की बात कर रहे हो? मुराद जल्दी से हाँ में सर हिलाता है और कहता है, और नहीं तो क्या, दूसरी शक्ल कहाँ से लाऊंगा? अरे अब इस चोट के लिए मैं प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी न करवाऊंगा। अमल और जन्नत हंसने लगती है। जन्नत धीरे से कहती है, मुराद भाई अम्मी कह रही थी कि इन चोटों के साथ आप डरावने लग रहे हैं, आपके साथ मीटिंग करने वाले लोग आपको ऐसे देखेंगे तो मीटिंग रूम से भाग जाएंगे। मुराद ने भी अपने कंधे उचकाते हुए कहा, किसे परवाह है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं हैंडसम था, हूँ और हमेशा रहूँगा। उसकी बात पर जन्नत और अमल दोनों हंसने लगते हैं। इनायत बस मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उन तीनों को देख रही थी। डाइनिंग टेबल पर हमेशा वो तीनों ही थे जो हंसने मुस्कुराने की बातें किया करते थे, और उनकी छोटी छोटी बातों से यहाँ का माहौल हमेशा खुशनुमा बना रहता था। कितने अच्छे थे ना तीनों, एक पिंजरे में रहने के बावजूद भी वो आज़ादी की ज़िंदगी जीते थे। हालांकि उनके आगे पीछे लोग रहते थे जो उनकी हिफाजत कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने विचारों से आज़ाद थे। पर वहीं दूसरी तरफ इनायत को शायद अपनी सोच पर भी पाबंदी लगानी थी।